समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
जिंदगी से हर किसी को कोई ना कोई शिकायत रहती ही है। क्यों भूल जाते हैं हम कि जिंदगी है तो आसान कैसे होगी, और अगर आसान हो गई तो फिर जिंदगी ही कैसी। इसलिए जीवन के अक्सर मरहलों पर हमें दिमाग से फैसले लेने चाहिए, मगर कुछ एक पर दिल की बात मान लेना भी कारगर होता है। गालिब ने भी कहा है ना, अच्छा है दिल के पास रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तनहा भी छोड़ दो। करके देखिए, कभी खुशी ही मिलेगी, क्योंकि दिल से किए गए फैसलों में मजबूरी नहीं मंजूरी होती है। फिलहाल दिल और दिमाग के कशमकश को एक तरफ रखकर हम भी आगाज करते हैं FM 100.1 MHz आकाशवाणी गोल्ड पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे का। साथ हूं आपके मैं नईम अख्तर और मेरी साथी सायरा मुज्तबा। सायरा, कैसा है आपका दिन, कैसी है आपकी सुबह और कैसी है आप?
जिस तरह आपकी शुरुआत हुई है सुबह की एकदम तरोताजा, वैसी हमारी भी, एंड आई एम श्योर दैट इवन ऑल आवर लिसनर्स वुड हैव अ परफेक्ट स्टार्ट टू द डे। नमस्कार आदाब, वेलकम टू आज सवेरे। आई होप यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम मंडे ब्लूज लाइक मोस्ट ऑफ अस डू, बट नॉनदलेस सम ऑफ यू वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू एन एनर्जेटिक वीक, एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर टू गिव यू दैट परफेक्ट स्टार्ट टू द वीक, टू द डे एज वेल, जिसमें हम लोग लाएंगे इस आधे घंटे के शो में ताजा तरीन खबरें। वील अपडेट यू विद द लेटेस्ट न्यूज, एंड ऑफकोर्स आपके अपने शहर की क्या खबर होगी वो भी जानेंगे ना मेट्रो न्यूज सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज 30th of September, एंड जो हमारा लास्ट सेक्शन है जिसमें हम कुछ हस्तियों को याद करते हैं, इधर हैव देयर बर्थडेज, बर्थ एनिवर्सरीज और डेथ एनिवर्सरीज, तो वेल इसमें आप ज्यादा क्लैश मत करिएगा अपने दिल और दिमाग के बीच में, दिल से दिमाग दोनों से लिसन टू आवर शो।
जी बिल्कुल, तो सबसे पहले हम आज के मुख्य समाचारों, अब तक के मुख्य समाचारों से शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौकरियों की तेजी से बदलती प्रकृति तथा गेमिंग, एनिमेशन और फिल्म निर्माण जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों पर जोर दिया है। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के रचनात्मक प्रतिभाओं में अपार क्षमता है। उन्होंने लोगों से सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित क्रिएट इन इंडिया थीम के तहत 25 चुनौतियों में भाग लेने का आह्वान किया। वेबसाइट wavesindia.org पर इन चुनौतियों में भाग लिया जा सकता है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस वर्ष 22 अगस्त को नई दिल्ली में पहले क्रिएट इन इंडिया चैलेंज की शुरुआत की थी। ये चुनौतियां आगामी विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स के लिए अग्रदूत के रूप में काम करेंगी। ये प्रधानमंत्री के भारत में डिजाइन, विश्व के लिए डिजाइन के दृष्टिकोण के अनुरूप होंगी। भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को आगे बढ़ाने और क्रिएटर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 5 से 9 फरवरी तक विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
Prime Minister of Jamaica, Dr. Andrew Holness, will be on a 4-day official visit to India beginning today. This will be his first visit to India and also the first ever bilateral visit of a Prime Minister of Jamaica to India. Earlier, Prime Minister Narendra Modi and the Jamaican Prime Minister had met several times on the sidelines of multilateral meetings. During the visit, Dr. Holness will hold delegation-level talks with Prime Minister Modi and call on the President and Vice President. All arrangements have been made for the third and final phase of assembly elections in Jammu and Kashmir. Elaborate security arrangements have been put in place for smooth, peaceful and incident-free polling. 40 assembly constituencies spread over 7 districts will go to polls in this phase tomorrow. Out of 40 seats, 16 are in Kashmir division while 24 are in Jammu region. Campaigning for the third phase of assembly elections ended yesterday evening. More than 39.18 lakh voters will decide the fate of 415 candidates in this phase. Polling, which will begin at 7 a.m., will continue till 6 p.m. Assembly elections in J&K are being held in 3 phases. While more than 61% polling was recorded in the first phase, second phase witnessed over 56% voter turnout. Counting of votes will take place on 8th of October along with Haryana.
हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता जनसभाएं कर रहे हैं। राज्य में एक ही चरण में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और राज्य में जम्मू कश्मीर के साथ मतगणना 8 अक्टूबर को होगी।
In US, at least 105 people have died after Hurricane Helene tore across the state and caused catastrophic flooding. a North Carolina county that includes the mountain city of Asheville reported 30 people killed due to the storm yesterday evening. Southeastern U.S. states started a massive cleanup and recovery effort yesterday after winds, rain and storm surges from Category 4 hurricanes snuffed out power, destroyed roads and caused catastrophic flooding from Florida to Virginia. Americans in the Southeast have felt the impact of Hurricane Helene's devastation across multiple states, including Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina, Tennessee, and Virginia. Days of driving rain followed Helene slamming into Florida's Gulf Coast on the 26th of this month. The majority of deaths have been confirmed in North and South Carolina, where Helene landed as a tropical storm.
आपने दो खबरें दी हैं, एक बाढ़ से जुड़ी हुई और एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबर है। दो खबरें मेरे पास भी इसी तरह की हैं। बिहार में कोसी, गंडक, बागमती, महानंदा और कमल बलान सहित उफनती नदियां कई स्थानों पर बाढ़ का कहर बरपा कर रही हैं। कोसी और गंडक नदियों से पानी छोड़े जाने के बाद सुपौल, सहरसा, अररिया, किशनगंज, मधुबनी, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज के कई निचले इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। 16 जिलों के 4,00,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। कोसी क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा के पास बाढ़ के कारण रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। और एक अंतर्राष्ट्रीय खबर यह है कि मध्य पूर्व संघर्ष में नया मोर्चा खोलते हुए इसराइल ने यमन में हूती ठिकानों पर हवाई हमले शुरू किए हैं। इसराइल की सेना ने कहा है कि ये हमले पिछले दो दिन में इसराइल पर ईरान से जुड़े हूती आतंकवादियों के मिसाइल हमलों के जवाब में किए गए। इसराइल ने अपने नागरिकों को किसी भी तरह के खतरे से निपटने का अभियान जारी रखने के दृढ़ संकल्प पर जोर दिया। इस घटनाक्रम ने विशेष रूप से गजा और लेबनन पर बढ़ते इसराइली हमलों के आलोक में क्षेत्रीय संघर्ष के व्यापक रूप लेने की आशंका बढ़ा दी है।
And now moving on to some sports news. In Junior World Wushu Championship, Indian team bagged a rich haul of 7 medals, including 2 golds in Bandhaseri Begawan, Brunei. India won 2 gold medals, 1 silver and 4 bronze. India's Aryan clinched the gold medal after defeating Gong Hyun Ran from China in the boys' group junior 48kg weight category. Shaurya triumphed over his Iranian opponent Ali Raza Zamani to win another gold medal in boys' 48kg section. Nam Hingbi Borfukan won a silver medal in the Taolu Jian Shu C group event.
एक खबर मेरे पास भी है, खबरों खेलों से जुड़ी हुई। 14वीं जूनियर महिला हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप आज से रांची में शुरू हो रही है। इसमें 26 टीमें खेलेंगी। टूर्नामेंट में कुल 8 पूल बनाए गए हैं। प्रत्येक पूल से शीर्ष टीम क्वार्टर फाइनल में खेलेगी, जो 7 अक्टूबर को होंगे। सेमीफाइनल मैच 9 अक्टूबर को होंगे, फाइनल 10 अक्टूबर को होगा। सेमीफाइनल में हारने वाली टीमें 10 अक्टूबर को कांस्य पदक के लिए आमने सामने होंगी। और सायरा, अब कुछ ऐसी खबरें ले लेते हैं जो हमारे देश के प्रमुख महानगरों से जुड़ी हुई हैं। शुरुआत आप कीजिए।
Okay, let's start with Shehre Chennai, Naeem. An exhibition of objects made from waste was launched at several railway stations in Trichy Division as part of Swachhta Hi Seva campaign. The exhibits were made from repurposed materials from the Central Railway Station workshop at Golden Rock Trichy by artisans from the workshop. Additionally, a vertical garden of decorative plants was installed at the VIP entrance of Trichy Junction to improve aesthetic and green ambience of the railway station. The exhibits will be displayed till the 2nd of October. The division also carried out a cleanliness drive at 20 railway stations.
और दिल्ली से मेरे पास दो खबरें हैं सायरा। न्यायमूर्ति मनमोहन ने कल दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राजनिवास में आयोजित एक समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति मनमोहन नवंबर 2023 से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे थे। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी मौजूद थी। और एक और खबर दिल्ली से है कि दिल्ली सरकार ने आश्वासन दिया है कि दिवाली तक राजधानी की सभी टूटी सड़कों की मरम्मत कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री आतिशी की अध्यक्षता में सरकार के सभी मंत्रियों और लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ कल दिल्ली सचिवालय में समीक्षा बैठक हुई। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि इस बैठक में पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर सड़कों की व्यापक समीक्षा हुई। इसके अंतर्गत सड़कों के पुनर्निर्माण और मरम्मत तथा छोटे छोटे गड्ढों के भराव पर विचार विमर्श हुआ। सरकार ने इसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को अक्टूबर तक शहर की सड़कों की मरम्मत करने का लक्ष्य दिया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने बताया कि सरकार युद्ध स्तर पर इन सभी टूटी हुई सड़कों को ठीक करके दिल्ली वालों को गड्ढा मुक्त दिल्ली जरूर देगी।
Moving on to Bengaluru, a wall painting competition was held in Bengaluru yesterday to create awareness about cleanliness among the public as part of Swachhta Hi Seva campaign. 11 teams from various colleges of Bengaluru competed by painting on the theme of cleanliness and environmental conservation. The Bengaluru Division of Southwestern Railways had organized the event. The additional Divisional Railway Manager, Parikshit Mohanpuria, and other senior officials were present on the occasion. Prizes for the best creations will be distributed on Gandhi Jayanti.
मुंबई से भी मेरे पास एक खबर है. देश में किसी भी नागरिक निकाय द्वारा अपनी तरह की पहली पहल में मीरा भाईंदर नगर निगम ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें उद्यमी बनने में मदद करने के लिए एक परियोजना शुरू की है जो त्योहारी स्नैक्स के उत्पादन, ब्रांडिंग और मार्केटिंग में स्वयं सहायता समूहों की मदद करेगी. फरल सखी नामक परियोजना नगर आयुक्त संजय काटकर के दिमाग की उपज है जो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के साथ मिलकर एक उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देती है जो विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यापक सहायता प्रदान करके महिलाओं का समर्थन करती है. एक संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम कानूनी और वित्तीय सहायता, विपणन और बिक्री सहायता को एकीकृत करते हुए फरल सखी परियोजना को 10 अक्टूबर को दिवाली से पहले लॉन्च किया जाएगा. स्वच्छ वातावरण में नाश्ता निर्माण प्रक्रिया के लिए एक केंद्रीकृत कार्यस्थल उपलब्ध कराने और सभी नगर निगम कार्यालयों में सहायता केंद्र स्थापित करने के अलावा MBMC यानी मीरा भाईंदर नगर निगम शहर भर में रणनीतिक स्थानों पर लगभग 200 विशेष रूप से डिजाइन किए गए वेंडिंग कियोस्क स्थापित करने की अनुमति जारी करेगी. इसके अलावा ये दुकानों और मॉल सहित निजी प्रतिष्ठानों को भी उत्पादनों को बेचने की सिफारिश करेगी.
And some news from Hyderabad. Hyderabad and parts of the state witnessed a sudden downpour yesterday, catching off guard many people who had ventured out for a holiday outing. The rain did provide the much-needed relief from the heat that dominated the earlier part of the day. As per the Telangana Development Planning Society's report, most of the places in Hyderabad received heavy rainfall. Meanwhile, the IMD has issued a thunderstorm alert for 17 districts for today.
महानगरों के समाचारों में आखिरी पड़ाव है हमारा कोलकाता का. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी 1 अक्टूबर से कई दुर्गा पूजा पंडालों का उद्घाटन करेंगी. इस साल महालया 2 अक्टूबर को पड़ रहा है. महालया दुर्गा पूजा से पहले का दिन है और इस दिन लोग नदियों और तालाबों या किसी जल निकाय के पास अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं. इसे संस्कृत में तर्पण कहा जाता है. ममता बैनर्जी 2 अक्टूबर तक लगभग 1000 दुर्गा पूजा पंडालों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगी. उद्घाटन प्रक्रिया से पहले जिलों के पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों से परामर्श किया जाएगा. और अब चलते हैं सायरा हम चलते हैं महानगरों के मौसम की तरफ. दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. हल्की वर्षा या बूंदाबांदी होने के आसार हैं. न्यूनतम तापमान 26 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. और कोलकाता में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है. न्यूनतम तापमान 28 डिग्री दर्ज किया गया जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. आपके पास क्या खबर है?
Well, if we look at Chennai, Bengaluru and Hyderabad, all these three cities are going to expect some rainfall today. In Chennai, the temperature would hover between 27 and 36 degrees Celsius. The sky would be generally cloudy today with some light rain expected. Bengaluru will also have a cloudy sky with some light rain and temperature will hover between 20 and 30 degrees Celsius. While Hyderabad, जैसे कि अभी मेट्रो से न्यूज में भी पढ़ा कि आज भी थंडर शावर्स हो सकते हैं वहाँ पे. एंड इन हैदराबाद द टेम्परेचर विल हॉवर बिटवीन 23 एंड 32 डिग्रीज सेल्सियस.
जी
Today is International Translation Day, Naeem, and we all know that translation ke bahut bahut zyada yogdan hai, you know, to bridge cultures, to bridge, you know, languages. So I think translation plays a very important role and it's celebrated every year on 30th of September.
Haan, aur translation hi woh cheez hai jisse hume अलग अलग भाषाओं के, जो हमारी भाषाएं ना कभी थी ना कभी हो सकती हैं, उनकी भी साहित्य को पढ़ने का हमें मौका मिल जाता है, क्योंकि उन भाषाओं से अनुदित जो रचनाएं हम पढ़ते हैं वो ट्रांसलेशन के जरिए ही हो पाती हैं।
Yes, that's why I said that it serves as a bridge connecting cultures and communities. Yeah, translation can also reflect and influence power imbalances. The event that is today World Translation Day aims to illuminate these intricate dynamics and foster a deeper understanding of the challenges encountered by indigenous language translators. Also, established by the United Nations in 2017, International Translation Day serves as a tribute to the tireless efforts of translators and interpreters in promoting dialogue, peace and mutual understanding among individuals from diverse linguistic and cultural backgrounds. It is a day to acknowledge those who work diligently behind the scenes to ensure the seamless flow of information across linguistic boundaries, thereby facilitating communication in our ever more interconnected world.
Itni sari jankari ke baad ek choti si line main bhi kehna chahungi ki hum dono jo yahan baithe hue hain wo bhi is cheez ko, is day ko hum bahut achi tarah se represent kar rahe hain. Yes. Hindi se English mein aur English se Hindi mein jo translation hamare shrotaon tak pahunchti hai wo is translation ki hi wajah se hota hai.
Yes, so we don't even notice that translation. Without translation, not even a single day would be complete in our lives. So today we kind of remember all those translators and interpreters. Also, if we take a look back in history today, Naeem, in 1836, the first English language newspaper in Hawaii, US was published. In 1989, INS Shalke, which was India's first indigenously built submarine, was launched in Bombay.
वापिस अगर 1882 में आए तो थॉमस एडिसन का पहला वाणिज्यिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ऑपरेशन आज ही के दिन शुरू हुआ था. 1898 में अमरीकी शहर न्यूयॉर्क की स्थापना हुई थी. 1947 में यमन और पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने थे.
Also in 1928, George Eastman, the founder of Kodak, demonstrated the first amateur color motion pictures at his New York house.
1984 में उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच 1945 के बाद पहली बार सीमा रेखा खोली गई थी.
In 1996, Dr. A.T. Aryaratne, Sri Lankan social scientist, received the Gandhi Peace Prize. And in 1997, the 24th Stock Exchange of India was set up at Trivandrum. In 1999, India successfully test-fired its multi-target surface-to-air missile called Akash. And in 2000, India's Priyanka Chopra, who was just 18 years old then, won the Miss World Beauty pageant. And she was a senior of mine in my school at that time.
Aray, wow, yes. Kya baat hai. Lekin agar aapne ek antarrashtriya star par koi pratiyogita jeetne ki baat kari hai, to ye bhi bata dete hain ki 2003 mein Vishwanathan Anand ne Vishw Rapid Chatran Championship jeeti thi aaj hi ke din, yani 30 September ko. और 30 सितंबर की खासियत या 30 सितंबर की अहमियत सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि 30 सितंबर के बारे में हमारे पास बहुत कुछ बताने को है अपने श्रोताओं को, क्योंकि आज ही के दिन जिन जिन हस्तियों ने इस दुनिया को छोड़ा या जो हस्तियां आज ही के दिन इस दुनिया में आई, उन्हें भी याद करने का वक्त आ पहुंचा है आज के आज सवेरे कार्यक्रम में. तो शुरुआत करते हैं हम पुण्यतिथि से, एक ऐसी हस्ती की जिनका नाम उन सभी के लिए बहुत ही सम्मान का विषय है जो उर्दू शायरी को पसंद करने वाले हैं. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अल्ताफ हुसैन हाली की. आज के दिन उनकी उनका निधन हुआ था 30 सितंबर 1914 को. उनका नाम उर्दू साहित्य में बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है. वो सर सैयद अहमद खान साहब के प्रिय मित्र और अनुयायी थे. हाली ने उर्दू में प्रचलित परंपरा से हटकर गजल, नज्म, रुबाई, मरसियां वगैरह सभी लिखे थे.
Yes, a very, very prominent shagird or disciple or student of Ghalib.
Yeah.
Yeah, Altaf Hussain Hali was one of the towering figures in Urdu literature. And Hali also wrote a biography of Ghalib titled Yadgar-e-Ghalib.
Yeah, aur ye bahut badi baat hai kyunki Ghalib ne unko khaas taur pe is baat ki permission di thi ki waise to main apna sher bhi kisi ko na kehne do lekin aapko jeevani likhne ki bhi permission deta hu. Khair, Hali ke bare mein kehne ko hamare paas bahut kuch hai, to wo bahut kuch na kehte hue sirf unke do ashar zarur main chahungi ki hamare sunne walon tak pahunch jaye. Hai justuju ke khoob se hai khoob tar kahan, ab thehrti hai dekhiye jaakar nazar kahan, hoti nahi qubool dua tar ke ishq ki, दिल चाहता ना हो तो ज़बां में असर कहाँ.
बिल्कुल, क्या बात है. आई होप हम लोग की ज़बां में असर हो जो कि लिसनर्स के दिल में भी असर करे.
देखिए फिर वही बात आ गई ना, दिल और दिमाग के बाद फिर घूम फिर के यहीं आ गए. हमने शुरुआत भी गालिब के शेर से की थी.
Yes.
खैर, आज ही के दिन एक बहुत बड़ी हस्ती का जन्म हुआ था, हालांकि आज वो हमारे पास दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बारे में बात करें उससे पहले एक और शख्सियत की भी बात कर लेते हैं.
यस, वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग चंदबर दाई टुडे, क्योंकि आपने एक उर्दू के शायर की बात की, तो क्यों ना एक दूसरे शायर या कवि की भी बात किया जाए.
एग्जैक्टली.
एंड पोएट हु कंपोज्ड पृथ्वीराज रासो एन एपिक पोएम इन ब्रिज भाषा अबाउट द लाइफ ऑफ पृथ्वीराज चौहान. द पोएम प्रेजेंट्स पृथ्वीराज चौहान, यू नो, प्रेजेंट्स चंदबर दाई एज अ कोर्ट पोएट ऑफ पृथ्वीराज. एंड according to it, after Prithviraj was defeated at the second battle of Terrain and taken to Ghazna by Muhammad Ghori, Chand Bardai traveled to Ghazna and helped Prithviraj kill Muhammad Ghori. This was the theme of the poem of Prithviraj Rasu. It was embellished with time and quite a few authors added to it. Only parts of the original manuscript are still intact. There are many versions of Rasu, but scholars agree that the biggest canto is considered the part of original Prithviraj Rasu. In its longest form, the poem comprises upwards of 10,000 stanzas.
Mm-hmm.
So Prithviraj Rasu was proved historically unreliable and inaccurate by historians, but nonetheless, if you see it as a, you know, piece of literature, it has its prominence.
लेकिन जो आपने इतनी सारी बात उनके पृथ्वीराज रासो के बारे में की, हालांकि हमारे सभी वो श्रोता जो हिंदी के स्टूडेंट रहे हैं या हिंदी की रचनाओं को पसंद करने वाले रहे हैं, उन सबको चंदबर दाई का नाम भी अच्छी तरह पता है और पृथ्वीराज रासो के बारे में भी पता है. एक चीज बस उसमें मैं और जोड़ना चाहूंगी कि रासो की जो रचना है, पृथ्वीराज रासो जो है, वो महाराज पृथ्वीराज के युद्ध वर्णन के लिए हुई है और उसमें उनके वीरतापूर्ण युद्धों और प्रेम प्रसंगों दोनों की ही जानकारी दी गई है. इसीलिए अगर इसमें हम ये कहें कि इसमें वीर और श्रृंगार दोनों ही रस हैं, तो ये गलत नहीं होगा.
Yes. और आपने कहा वीर और प्रेम रस, तो ऐसे ही एक हस्ती को याद करते हैं जिनकी जो बहुत ही नामी, यू नो, फिल्म मेकर रहे हैं और उनकी फिल्म्स में हर तरह के रस आपको मिले हैं अब तक के.
मतलब अगर मैं ये कहूँ कि वो मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स हैं, तो उसमें गलत नहीं होगा. लेकिन वो कौन है जिनकी आज जयंती है, उनके बारे में आप खुद ही जरा हमारे श्रोताओं को गेस करने देते हैं.
अरे बाबू, आप उस तजुर्बेकार लोगों की फाइल निकालिए, लगता है उन्हीं में से किसी को लेना पड़ेगा. अरे बाबू, आप उस तजुर्बेकार लोगों की फाइल निकालिए, लगता है उन्हीं में से किसी को लेना पड़ेगा. ये नई जनरेशन से मुझे बड़ी मायूसी हुई. बड़े बाबू, आधों को तो मुझे नहीं, बाकी आदों के लिबास देखिए, बातें सुनिए तो सर में खून चढ़ जाता है. इस देश का कुछ होने वाला नहीं. दिस कंट्री इज नो फ्यूचर. अब बस एक ही बाकी है, मैं उसे भी देख लेता हूँ. आप एक्सपीरियंस लोगों की फाइल निकालिए.
तो क्या गेस किया आपने, मतलब अपने श्रोताओं से पूछ रही हूँ, अब उनकी आवाज तो आएगी नहीं हम तक.
दिस फेमस डायलॉग ऑफ उत्पल दत्त फ्रॉम द एपिक मूवी गोलमाल. सो वी आर रिमेम्बरिंग ऋषिकेश मुखर्जी टुडे.
एग्जैक्टली. और ऋषिकेश मुखर्जी एक ऐसे फिल्मकार रहे जिन्होंने बहुत मामूली विषयों पर बहुत ही संजीदा फिल्में बनाई हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी फिल्मों में मनोरंजन के पक्ष को कभी भी अनदेखा नहीं किया. और यही वजह है कि एक तरफ अगर उनकी सत्यकाम और आशीर्वाद जैसी और आनंद जैसी फिल्में हैं, तो दूसरी तरफ चुपके चुपके जैसी फिल्म भी है. एक तरफ अगर अभिमान है, तो दूसरी तरफ उनकी दूसरी फिल्में भी हैं जिनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते. और बड़े बड़े कलाकारों ने उनकी फिल्मों में काम किया, या यूं कह लीजिए कि बड़े बड़े कलाकारों ने काम तब किया जब वो बड़े नहीं थे. इनकी फिल्मों में काम करने के बाद ज्यादा बड़े कलाकार हो गए.
यस, एब्सोल्युटली. और जो कहा जाता है ना नईम, दैट सिंप्लिसिटी इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू अचीव. तो आई थिंक दैट बिफिट्स ऋषिकेश मुखर्जी एंड हिज सिनेमा, बिकॉज इट अपीयर्ड सो सिंपल दैट इट अपीयर्ड टू बी वन ऑफ द, यू नो, स्टोरीज ऑफ आवर लाइव्स और मे बी ऑफ आवर नेक्स्ट डोर. बट येट वी ऑल नो दैट इट इज अ वेरी डिफिकल्ट फीट टू अचीव दैट सिंप्लिसिटी. पॉपुलरली नोन एज ऋषि दा, He directed 42 films during his career that spanned 4 decades and is named the pioneer of the middle cinema of India. Renowned for his social films that reflected the changing middle class ethos, Mukherjee carved a middle path between the extravagance of mainstream cinema and the stark realism of art cinema. तो जो एकदम सच्चाई है middle class की, वो उसको दिखाते थे. वो आप उसको art movie भी नहीं कह सकते थे because वो mainstream भी थी, but वो एक larger than life जिसमें swanky car से hero चल रहा है और you know एक उसके अंदर एक you can say जो भी ताकत आ जाती है कि वो चार लोगों को मार दे, ऐसा कुछ नहीं होता. It was very realistic cinema.
और यही वजह थी कि जो आम तौर पे हम जैसे जो मध्यम वर्गीय परिवार होते थे, उन्होंने yes. इनकी फिल्मों को बहुत पसंद किया. बस एक एक इनकी जो फिल्म रही इनकी दौर की, इनकी करियर की आखिरी फिल्म झूठ बोले कव्वा काटे, उसने उस तरह का बिजनेस नहीं किया जिस तरह की बाकी फिल्मों ने इनका बिजनेस किया. और अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, जया भादुरी जैसे न जाने कितने ही ऐसे नाम हैं जो बहुत सुपरस्टार्स की श्रेणी में आते हैं. तो दूसरी तरफ अमोल पालेकर जैसे भी नाम है, विद्या सिन्हा जैसे भी नाम है जो मतलब हमें और आपको रिप्रेजेंट करते हैं. लगता ही नहीं कि ये फिल्मी पर्दे पर है, लगता है ये हम में से ही कोई है.
एब्सोल्युटली नोन फॉर अ नंबर ऑफ फिल्म्स इंक्लूडिंग अनाड़ी, सत्यकाम, चुपके चुपके, अनुपमा, आनंद, अभिमान, गुड्डी, गोलमाल, मंजली दीदी, आशीर्वाद, बावर्ची, खूबसूरत, किसी से ना कहना, नमक हराम. ऋषिकेश मुखर्जी रिमेन्ड द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन एंड ऑल्सो ऑफ द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विद दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन 1999 एंड द पद्म विभूषण इन 2001. ही रिसीव्ड द एनटीआर नेशनल अवार्ड इन 2001 एंड ऑल्सो वन 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स.
अभी क्योंकि जैसे मैंने बात की थी कि हर तरह के जो रस है इनकी फिल्मों में देखने को मिल जाते हैं, तो एक फिल्म आई थी चुपके चुपके जिसमें सिर्फ हंसी ही हंसी थी, एक फिल्म आई थी आनंद जिसमें बहुत जबरदस्त कॉमेडी लेकिन बहुत ही सीरियस मैसेज था,
right.
और एक फिल्म आई थी अभिमान जिसमें पति पत्नी के रिश्तों को एक नए दृष्टिकोण से दिखाया गया था. क्यों ना तीनों फिल्मों के एक एक गाने की एक एक लाइन सुन के उसकी मेडली सुन ली जाए.
बिल्कुल.
सपने सुरीले सपने, कुछ हंसते कुछ गमते, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने. ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने.
और आज है जन्मदिन प्रोसेनजीत चटर्जी का. 30 सितंबर 1962 में उनका जन्म हुआ था. और प्रोसेनजीत चटर्जी बताने की ज़रूरत नहीं है उन सभी को जो जानते हैं, जो ख़ासतौर पे हिंदी के साथ साथ बांग्ला फिल्मों के भी शौकीन हैं, कि हिंदी फिल्मों के एक बहुत मशहूर अभिनेता बिस्वजीत चटर्जी के बेटे हैं प्रोसेनजीत चटर्जी. खुद एक अभिनेता और निर्माता भी हैं. आधुनिक बंगाली सिनेमा के अग्रणी अभिनेताओं में से उन्हें एक माना जाता है. मुख्य रूप से बांग्ला सिनेमा में ही काम करते हैं लेकिन कभी कभी कुछ फिल्मों में हिंदी में भी उन्होंने काम किया है. और अपने अभिनय करियर की शुरुआत उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की चौटो जिज्ञासा में एक बाल कलाकार के रूप में की थी. उनके एक फिल्म का एक डायलॉग सुन लेते हैं जिसके लिए उन्हें पुरस्कार भी दिया गया था.
बाबूजी, बाबूजी, एक तो देरी हो गया लो, ना जल्दी खेलो, राख, कथा बोल ची, तू एक तो बाहर ही गये बोस, बोस ची, किंतु आर बेशी देरी करो ना, एमजी तो जाने एक देरी हो गया से.
Today we are also remembering Shaan. It's his birthday today and he doesn't need any introduction. A singer and composer par excellence, he's known as the golden voice of India. Shaan established himself as one of the leading singers in the Indian film industry. And agar unki jo hai baat kahi jaye to bahut si filmon mein unhone yaadgar gaane diye, isn't it?
Ji bilkul. Aur Shaan ke naam se kahin hamare shrota jo hain confused na ho jaye to unko bata diya jaye ki Shaan शांतनु मुखर्जी उनका पूरा नाम था.
राइट, बल्कि कंफ्यूज शांतनु मुखर्जी से ज्यादा होंगे बिकॉज़
शान फिल्म 80s में शान फिल्म आई थी ना, तो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं.
ओके, सो यस, लेट्स लिसन टू वन ऑफ हिज सॉन्ग.
जी बिल्कुल.
घर से हम चल तो दिए जाने ये राहें अब ले जाएंगे कहाँ। मिट्टी की खुशबू आए पलकों पे आंसू लाए पलकों पे रह जाएगा।
हाँ, तन्हा दिल तन्हा सफर, लेकिन ये सफर जो है हर रोज हमारे श्रोताओं के साथ रहता है। अभी आज के सफर से इजाजत लेने का वक्त हो गया। अनुमति दीजिए नईम अख्तर और सायरा मुज्तबा को आज से मेरे कार्यक्रम यही समाप्त करने की।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग लिसनर्स, हैव अ ग्रेट डे अहेड।
नमस्कार।